जब एथेंस की इबादतगाह से निकलने वाली मुकद्दस आवाज़ ओरेकल ऑफ डेल्फी इस बात का ऐलान करती है कि सोक्रेटिस एथेंस का अक्लमंद तरीन आदमी है, तो सब हैरान रह जाते हैं। खुद सोक्रेटिस भी हैरान रह जाता है और वो इस बात को एक पहेली समझता है। और फिर वो एक ऐसे शख्स की तलाश में निकलता है कि जो उससे भी ज़्यादा अक्लमंद हो। वो उस जमाने के आलिमों, जिन्हें सोफिस्ट्स कहा जाता था, के पास जाता है और अपने मखसूस सवालिया तर्ज मुबाहिसा से गुफ्तगू का आगाज करता है। बहुत जल्द ही उस पर यह बात वाजे हो जाती है कि अपने आप को आलिम कहलवाने वाले ये लोग खुद अपने ही अफकार व ख्यालात में तजादात का शिकार हैं। सोफिस्ट से तवील मुबाहिसों के बाद सोक्रेटिस को डेल्फी की इस बात का यकीन आ गया कि वो एथेंस का अक्लमंद तरीन आदमी है, क्योंकि उसे ये बात मालूम हो गई कि अगरचे वो भी उतना ही अक्लमंद है जितना कि दूसरे इंसान, लेकिन उसे अपनी कम इल्मी और जहालत को कबूल करने में किसी झिझक का सामना नहीं। उसकी अना सच की तलाश में उसके लिए रुकावट नहीं। और वो कहता है, मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। गोया हमारे दानिशमंद बनने में जो बात सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती है, वो अपनी कम इल्मी का एतराफ़ न करने वाली हमारी अना है। सोक्रेटिस का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि इल्म और हकीकत दरअसल हमारी रूह में खाबीदा है, मगर उस तक पहुँचने के लिए हमें दुरुस्त सवालात और अपनी अक्ल को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। हम बरवक्त और मुनासिब सवालों की मदद से और कदम ब कदम गौर व फिक्र के ज़रिए से सच की तलाश के इस सफ़र को कामयाबी से इख्तियार कर सकते हैं। वो अपने शागिर्दों से किए हुए मुकालमात में इस तरीक़ेकार की अमली मिसाल पेश करता है। वो इसे सच को जन्म देने का तरीक़ेकार कहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उसकी माँ एक मिडवाइफ होने के हवाले से किसी हामिला माँ की मदद करती थी कि वो जिंदगी से भरपूर बच्चे को जन्म दे सके। सोक्रेटिस इस तरीक़ेकार को मियोटिक्स कहता है, गोया एक तरीक़ेकार किसी नए ख्याल को जन्म देने का जैसा कि किसी बच्चे को जन्म देने का। एथेंस के लोगों को इखलाकी और रूहानी तौर पर बेदार रखने के हवाले से सोक्रेटिस अपने आप को घोड़े के जिस्म पर मौजूद एक डंकदार मक्खी कहता है कि जो सुस्त होते हुए घोड़े को बार बार डंक मारकर उसे तवाना और तेज रफ्तार रखती है। वो गौर व फिक्र करता है ऐसे इखलाकी मयार पर कि जो सब इंसानों पर लागू होता हो, सबके लिए मसावी हो। वो कहता है, इल्म नेकी है और इल्म रखते हुए उसका साथ न देना बदी है। वो मुसलसल इल्म हासिल करने पर असरार करता है और इल्म के हुसूल को हर इंसान की बुनियादी जिम्मेदारी करार देता है। एथेंस के नौजवान उसके ख्यालात और उसकी बातों से मसहूर हो जाते हैं और उसकी ये हर दिल अजीजी और मकबूलियत बिलाखिर उसे एथेंस के हुक्मरानों की नजर में खटकने वाला कांटा बना देती है। और फिर उस पर एथेंस शहर की ज्यूरी नौजवानों को गुमराह करने और नए खुदा तराशने का संगीन इल्जाम लगाती है, लेकिन मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दलिल गुफ्तगू पर दस्तरस रखने वाला सोक्रेटिस एथेंस के बासियों के सामने भरपूर दलाइल से ये साबित कर देता है कि वो काबिले सजा नहीं बल्कि इंतहाई मोहतरम और सताइश के काबिल है। लेकिन ज्यूरी के मेम्बरान उसकी इन बातों से मजीद चिरागपा हो जाते हैं और वो उसे मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना देते हैं। इस सजा पर अमल दरामद से पहले का एक महीना वो अपने तमाम शागिर्दों और दोस्तों के साथ रूह की लाफानियत के मौजू पर बहस व मुबाहिसा में गुजारता है। इस सजाए मौत से चंद ही रोज पहले उसका एक शागिर्द क्रीटो जेलर को रिश्वत देकर उसके फरार का मुकम्मल इंतजाम कर लेता है, ताकि वो एथेंस से भागकर अपनी बकाया जिंदगी आराम और आसाइश के साथ गुजार सके। लेकिन सोक्रेटिस इस मंसूबे पर अमल करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि राइज शुदा कानून पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। अगरचे मुझे एक गलत फैसले के तहत सजाए मौत सुनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद इज्तिमाई फिक्र के नतीजे में किए गए फैसले का एहतराम करना चाहिए। वो अपने गिरियाओजारी करते हुए शागिर्दों के दरमियान और अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों की महफिल में बैठे हुए बहुत इत्मीनान और आराम के साथ प्याले में छलकते हुए सयाल जहर हेमलॉक को एक एक घूंट करके और जब तक कि प्याला बिल्कुल खाली ना हो जाए पी जाता है, और इस अमल के दौरान मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहता है। और जब उसके शागिर्द और दोस्त और मद्दाह ज़ारो क़तार रोते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें शर्मसार करता है। उसके आखिरी कहे गए अल्फाज का मफहूम ये है, जिस्म की कुर्बानी रूह की लाजवाल शफायाबी के लिए ज़रूरी है। सोक्रेटिस की वफात का सन है 399 BC। सोक्रेटिस शायद इंसानी तारीख में सबसे अजीम और सबसे कामयाब उस्ताद था, सही मानों में एक इनकलाबी। उससे पहले की रिवायती फिक्र कायनात के सरबस्ता राजों को आश्कार करने पर मरकूज थी, लेकिन सोक्रेटिस की इनकलाबी सोच ये कहती है कि अहम बात ये नहीं कि कायनात किस तरह कार फरमा है, बल्कि बुनियादी और अहम बात ये है कि हम इंसान होने की हैसियत से इस कायनाती अमल में क्या इखलाकी जिम्मेदारी रखते हैं। जिंदगी गुजारने के अमल के दौरान हमारी सोच और हमारा रवैया किन इखलाकी मयारों के मुताबिक होना चाहिए। वो इसरार करता है कि सबसे अहम बात इखलाकियात है। सोक्रेटिस की वफात के बाद उसके शागिर्दों, खास तौर पर प्लेटो और जेनेफोन ने उसके अफकारो ख्यालात को अपनी तहरीरों में जिंदा रखा, जैसे वो एथेंस के लोगों से कह रहे हों कि जहर का प्याला पीने वाला सोक्रेटिस आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। सड़क पर चलते चलते हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि एक तेज रफ्तार रिक्शे की भरपूर आवाज ने हमें खामोश रहने पर मजबूर न कर दिया। खुशगवार तासुर के एहतराम में अब भी चलते चलते मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने जिस्म को आड़ बनाकर बरतानिया से आए हुए इन तालिबे इल्मों की नजरों को सिविल अस्पताल की ओपीडी के गेट के सामने पड़े हुए कूड़े के अंबार तक ना पहुंचने दूं।